Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai, the capital of the state of Maharashtra. Now, why am I specifying that? That's because my guest today was considered the second most important person in Mumbai. Smita Thackeray, the daughter-in-law of Bala Saheb Thackeray, is said to have even picked up the chief minister candidate then. It wasn't just politics. Smita Thackeray, like the others in the Thackeray family, wielded clout even in the film industry. She could pick up the phone and talk to any film producer, and her recommendation was met with immediate compliance. However, she fell out of favor with the family with the passing of Bala Saheb Thackeray and has gone into political oblivion. But last year, she met with the current chief minister, Eknath Shinde, and speculation again grew whether Smita Thackeray was back in action. Smita ji, thank you so much for being part of the podcast.
My pleasure, Smita ji.
We are going to do this Smita ji business all through. So, I want to start about your life journey. Everybody knows, you know, and you came back into political news because last year, aap jab CM se mile, to it was like, oh my God, Smita Thackeray is back in the news. She's back in politics and things like that. So you came back in the news at that time. But let's go back. Let's rewind about your childhood, how you met and how you met everybody in the Thackeray family. Kaise hua wo sab? Let's go back to that.
Basically, I'm from the middle class family. Hmm. And my mom was a teacher. And my
Mumbai mein?
Haan, Mumbai mein. Hmm. She was teaching in some UP ke school mein wo kar rahi thi. Padhai thi. Aur mere pitaji premier automobile mein the. So we were from three sisters. Hmm. And our priority was more of into education. So my mom dad were working. So humare isme pura unhone dhyan diya ki humko achha shikshan de, har cheez humko padhaye. उसके बाद मैं बीएससी कंप्लीट किया मैंने जेनेटिक्स में और
जेनेटिक्स में
हाँ जी
ओह माय
सो इट वाज आई रियली
इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट ना उस वक्त
जेनेटिक्स या इट वाज लाइक सो बट वी हैड अ वेरी लवली टीचर सो शी परस्यूड एंड शी लिटरली फोर्स्ड
किस कॉलेज में से
रूपरेल कॉलेज
रूपरेल
तो बहुत अच्छे शिक्षक थे एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स एक्चुअली आई वाज नॉट वेरी गुड इन माय स्टडी फर्स्ट बट इट वाज माय फादर्स डिजायर दैट आई शुड इन हमारे फैमिली में किसी को फर्स्ट क्लास नहीं मिला था ऑनर्स कोई था नहीं तो तभी मुझे उस वक्त मेरे पिताजी ने कहा कि कुछ फर्स्ट क्लास ला के दिखाना तो मेरे लिए तो वो चैलेंज था और मेरे पिताजी का वर्ड मेरे लिए बहुत सबसे मायने रखता है क्योंकि हम बहुत मानते हैं उनको तो बस उस वक्त उस साल बहुत पढ़ाई की और फिर उनकी इच्छा पूर्ति की तो बस यही एक चैलेंज उस लेते गए एक्चुअली ये मेरा स्वभाव है कि जो अगर किसी ने कुछ इंस्टिगेट किया है तो वही चैलेंज मैं लेती रहूँगी और आज तक वही करती आई और वो मेरे ख्याल से जर्नी में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है
हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास सॉलिड बैकग्राउंड
जी बिल्कुल
तो फिर देन यू गॉट इनटू द वर्कफोर्स First job?
Ji, I got a job in MOPEC, that is MOPEC, overseas recruitment ka wo tha. फिर मैं सेंटोर में थी फिर सेंटोर में मैं सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एज अ ट्रेनी सब सीखने फिर लास्ट मेरी वो थी कि पर्सनल असिस्टेंट करके सेंटोर में बस आफ्टर दैट देन आई गॉट टू नो थ्रू कॉमन फ्रेंड्स ठाकरे फैमिली और
जयदेव से मिले
हाँ फिर शादी हो गई उनके घर में और बस शादी के बाद की लाइफ
हाउ डिड यू एडजस्ट टू द फैमिली क्योंकि आपकी फैमिली अलग थी ये पॉलिटिकल फैमिली
एक्चुअली उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया मैं जब शादी होके आई थी तो दे वर क्वाइट वेरी नॉर्मल पीपल लाइक ऑफकोर्स मेरे लिए साहब तो बहुत बड़े और मैं जब कोई एक फंक्शन में मेरे हाथों से उनको बुके दिया गया था तो कोई एक कॉमन फंक्शन था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं उनके घर में बहू बन के चली जाऊँगी पर मेरे लिए तो वो ऑफ फैक्टर थे उस वक्त क्योंकि वो बाला साहेब ठाकरे उस वक्त तो शिवसेना उन्होंने फॉर्म 1962 में फॉर्म की थी और वो जो भी है उनकी एक इमेज मेरे दिल पे हमारे बचपन से हमारे मेरे पिताजी माँ बाप उनको हम सब उनको फॉलो करते थे तो एक्चुअली जब उनके घर में मैं पहली बार पहुंची तो मैं बहुत बड़े ऑ में थी फिर कि फिर धीरे धीरे पहचान हो गई उनकी घर के लोगों से और उन्होंने इतना प्यार दिया शादी के बाद, मीन्स मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कोई ऐसे अलग हुआ। और मेन चीज़ इतनी कि मेरी सास को खाना बहुत पसंद था, तो हमने सेंटोर में थी तो मैं काफ़ी कुछ कुकिंग वुकिंग बहुत अच्छी तरह से जानती थी, तो उनको खुश करना आता था मुझे कि अच्छा अच्छा खाना खिला के, वो बात अलग है, मैं मजाक बात, बट मेरे लिए वो बहुत मायने रखे और बहुत प्यार दिया उन्होंने। और जो भी सीखा है आज मैंने वो माँ और साहब से सीखा है। माँ और पिताजी, मेरे माँ और पिताजी ने जो भी शिक्षा दी, दीक्षा दी, वो तो होती है, वो बचपन से जो भी हमको माँ बाप सिखाते जाते हैं, पर जो लोगों से बात करना या लोग अगर अपने घर पे आते हैं तो उनको कैसे हॉस्पिटैलिटी, दैट्स मेरी सास की वो खूबी थी,
क्योंकि वो जितने उनका लोगों का आना जाना कंटिन्यूअस कतार में लोग आते थे
और उनको इतने प्यार से वो खिलाती थी और इतने प्यार से सबसे बात करती थी, वो उनका उनको देख के हमको स्फूर्ति आती थी, उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था।
सो शी वॉज द पावर बिहाइंड बाला साहेब, आप कहेंगे, क्योंकि नोबडी सॉ हर, यू नो, लाइक पीपल डिडंट सी हर। जो उनके बाला साहेब के घर जाते थे वो शायद मिलते होंगे, लेकिन कॉमन पीपल डिडंट नो हु शी वॉज।
वो एक्चुअली शी वॉज अ पावर, शी वॉज एन एनर्जी ऑफ द हाउस। तो वो एनर्जी, आप अगर आप, मैं एनर्जी का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माँ जाने के बाद वो एनर्जी लेवल बहुत डिस्टर्ब हो गई हमारे घर की, पूरी एनर्जी लेवल, वो जो यूनिटी थी ना वो माँ की वजह से थी हमारे घर पे। और माँ जाने के बाद बहुत ही डिस्टर्ब हुआ, साहब खुद डिस्टर्ब रहे, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, उनकी लाइफ अलग अलग, हर एक बच्चों की अलग अलग लाइफ थी, पर बात ये थी कि यूनिटी की थी और वो यूनिटी रही नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत दुख की बात थी। और माँ ने सबको जोड़ के रखा था, लिटरली मिस कजिन्स हो या उनके मेरे साहब के, मिस मेरे ससुर जी के, उनके साइड के लोग हो या इनके साइड के लोग हो, सब पूरा बड़ा बड़ा परिवार हम इकट्ठा मिलते थे कई बार फंक्शंस में, साहब के बर्थडेज पे, मीन्स वो तो एक बड़ा फेस्टिवल रहता था हमारे घर में, लाइक सुबह 4 बजे उठ के हम लोग लिटरली त्यौहार मनाते, कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता था पर साहब का जन्मदिन सुबह 4 बजे से हमारे घर पे रहता था, तो एक एक बहुत अच्छे संस्कार डाले थे घर में, एक बोलते ना एक फेस्टिवल हो तो घर में लोगों को कितनी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। फिर गणपति हो या नवरात्रि हो, तो ये सब चीज जहाँ हम बहुत प्यार से एकत्रित रहते थे, तो मेरे ख्याल से वो जाने के बाद बहुत बड़ा क्रैक आ गया हमारे घर में,
बिकॉज अंडरलाइंग टेंशंस तो थी ही ना। मतलब देर वॉज राज ठाकरे, देर वॉज उद्धव, देर वॉज योर हस्बैंड, देर वॉज यू, मतलब देर वॉज दीज कॉम्प्लिकेशंस विच आर ऑलरेडी हैपनिंग, और शिवसेना में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। सब लोग सोचते हैं ना, जब एक परिवार का हेड होता है उसके बाद एक सक्सेशन बैटल सब लोग सोचते हैं कि कौन से कहाँ पे, हु विल कम, हु विल नॉट, तो वो अंडरलाइंग टेंशंस हमेशा थी। बट यू आर सेइंग कि माँ जो है वो सबको जोड़ के रखा हुआ था।
एक्चुअली माँ, मीन्स मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, अभी आप जो पूछ रहे हो वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं,
बट साथ साथ चल रहा था।
आई नो वो एक्चुअली होता क्या है कि वो ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करती थी साहब के पॉलिटिक्स में।
अच्छा।
और घर की जहाँ तक बात है वो घर की बात घर तक रहती थी, और जहाँ निर्णय लेने का वक्त आता है या जहाँ किसी को पद देने का या कुर्सी देने का, वो केवल और केवल सिर्फ साहब का निर्णय होता था, तो वहाँ कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते थे वो, उनको जो सही लगता है वो सुनेंगे सबकी पर करेंगे अपनी मन की। वो ऐसे
लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप जो है, यू हैड अ लॉट ऑफ पावर, एक वक्त था कि आपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी आपने सिलेक्ट किया
तो कहने की बात है, चलो हमको इतना अगर वो दे रहे तो हम ले रहे, उसमें कोई
ऐसे नहीं था।
हाँ नहीं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बहुत ही लोगों को मिलती रहती थी, क्योंकि साहब को बाद में ऐसा था कि सब हर किसी को नहीं मिलना होता था, और मेरा जो फैमिली लाइफ था उसमें काफ़ी वक्त मुझे ऐसा था कि मैं सीखना चाहती थी लोगों को, साहब कैसे हैंडल करते हैं, वो मेरा स्वभाव था। तो वो साहब ने हमेशा इनकरेज किया है, हर महिलाओं को इनकरेज किया है, तो वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तो आके बैठ फिर देखना कैसे क्या होता है क्या नहीं। और धीरे धीरे क्या होते गया कि हर लोगों को साहब नहीं मिलते थे, तो फिर जाके मिल के आ जा, देख उनको क्या चाहिए, ये ऐसे धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर लोगों की कतार शुरू हो गई, लोग यही देखते हैं कि आप कितना उनको सुनते हैं या क्या उनके प्रश्न लेके वो जो आते हैं, आप में उतनी ताकत है सुनने की, या वही एक आशा लेके आते कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो साहब तक पहुंचेगा यार, हमको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। तो हमने वही काम किया है जो हमको बोला गया, ना हमने कोई उसके ऊपर जाके कुछ किया है ना कुछ। अगर आप मेरे पास कुछ आया कि एक फलाना ढिंगाना उसको ऐसे ऐसे करना है, अगर हमने उस वक्त किसी को फ़ोन भी किया होगा कि ये इसका इसका काम है, हमने अपने काम के लिए नहीं किया ना, किसी और के काम के लिए किया, तो अगर उसमें मुझे आप प्यार करने लगे या मुझे चाहने लगे क्योंकि अरे इन्होंने तो सुना, इन्होंने तो हमारी मेरी पहचान अगर बढ़ने लगी, तो उसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को करना चाहिए, अगर अपने को उस वो कुर्सी मिली है या मौका मिला है तो करना चाहिए। आज मैं वही उद्देश्य लेके समाज सेवा में 25 साल गुजारे मैंने। मैंने ये तो नहीं किया है कि मैं नहीं मुझे पद चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे तो नहीं किया ना। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जितना लोगों को काम में आ सकूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने एक कहीं ना कहीं ताकत दी है, मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, तो मुझे उसका उपयोग करना है, एक ही जीवन है मेरा। बस यही उद्देश्य लेके मैं चलती गई, और जर्नी में क्या क्या कौन कौन मिलते गए और मुझे लोगों ने क्या क्या से क्या बना दिया वो मुझे नहीं पता था।
उस वक्त इक्वेशंस क्या थी, इन द सेंस दैट बाला साहेब क्यों राज ठाकरे को इनकरेज ज़्यादा करते थे और उद्धव को उन्होंने पीछे, वो इक्वेशन क्या था? उनके बेटे जो थे, जयदेव ऑलरेडी हैड लेफ्ट आफ्टर योर मैरिज ब्रोक अप, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस, पर फिर उद्धव पीछे ही थे, आगे नहीं आ पाए, और राज ठाकरे को कहा जाता था कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे लेकिन वो नहीं बने, क्या हुआ क्या था उस वक्त?
एक्चुअली उद्धव पहले थे ही नहीं पॉलिटिक्स में, जो सबसे पहले राज ही आए थे, और राज में वो काफ़ी कुछ बहुत आत्मसात किया था साहब की, वो जो भी काम करने का तरीका या निर्णय लेने का तरीका या जो भी है, तो राज की एंट्री पहले हुई है डेफिनेटली। उसके तब तक तो वो उद्धव फोटोग्राफी और उसमें बहुत खूब बहुत अच्छा काम करते थे, पर एक दिन अचानक उनको भी शायद लगा कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। वो अभी क्या कौन से उद्देश्य से उनका निर्णय हुआ वो नहीं मुझे पता, वो शायद अंदर की बातें हैं, पर अच्छा किया उन्होंने भी। देखो समाज कार्य होता है, राजकारण क्या होता है, वो समाज कार्य का, हम इस समाज का एक हिस्सा, जितने भी लोग आए कुटुंब के आए या देश के आए, वो अच्छा ही है देश के लिए। अभी बात कहाँ पहुँची और कहाँ डिस्टर्ब हो गई वो खुद ही जाने, क्योंकि डिस्टर्ब तो हुई है डेफिनेटली। कुछ चीज़ें होती है जो पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो दोनों पॉलिटिक्स में थे, मैं नहीं थी, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि कहीं ना कहीं बात डिस्टर्ब हुई है, और कुछ चीज़ें होती है कि जो चाहते हैं वो नहीं मिला, या किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम मिला, तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड हो जाता है।
फिर आप भी तो उस वक्त पॉलिटिक्स में थी?
मैं नहीं थी, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैंने हमेशा बैकग्राउंड पर रह के काम किया है। मुझे आज तक शिवसेना में एंट्री नहीं मिली है, मिस ना मैंने ली है ना मैंने कोई बकायदा बोला उनको कि मैं शिवसेना में हूँ, आज तक मुझे कोई ऐसा स्टैंप नहीं लगा है।
क्या उन्होंने जान के आपको बाहर रखा कि आप बहू हैं, आप हिस्सा नहीं बन सकती?
नहीं, जान के मिस साहब ने तो नहीं रखा 100%, क्योंकि साहब मुझे हमेशा इनक्रेज करते आए हैं, और जब मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे समाज सेवा में अच्छा लगता है, मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, मैं ड्रग्स डीलर्स को मिलती थी या उनको सब बच्चों को मिलती थी, स्पास्टिक बच्चों को, हेलन केलर से मेरा वो था, तो मेरा काम वो समाज सेवा का काम तो चलता रहता। तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे थोड़ा बड़े पैमाने पे करना है, वो सिर्फ मैं करती तो हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं, और मुझे थोड़ा बिकॉज ऑफ माय टर्बुलेंस इन माय मैरिज, आई रियली वांटेड टू डाइवर्ट माय माइंड, आई रियली वांट टू पुट माय एनर्जी इन अ डिफरेंट एंड वेरी पॉजिटिव वे। So when you see somebody who's in needy in your, so you definitely feel that your अपना खुद का दुख कुछ भी नहीं है. तो ये सब चीज़ों में मैं बहुत मानती हूँ और ये मैं करती गई. तो साहब ने मुझे कहा कि बैठ इधर, हम लोग इसके बारे में सोचते, तू फाउंडेशन फॉर्म कर. तो मैं बोली बहुत अच्छी बात है. तो क्या फाउंडेशन, लिटरली एक मिनट में उन्होंने फाउंडेशन का नाम बताया और एक पेपर और पेन लिया, उस पर कुछ ड्रॉ किया. बोलते ये इम्पॉर्टेंट फॉर माई लाइफ एंड इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. एंड देर आर सो मेनी टाइम लाइक वेयर यूज टू आईज टू एवरी डे आईज टू गो बाउ डाउन टू हिम. माँ जाने के बाद माँ माँ के फोटो को हम बाउ डाउन करते थे, तो वो एवरी डे का रिचुअल होता था. अगर मैं कहा बाहर चली गई तो वो डायरी में लिखा जाता था कि आज स्मिता नहीं आई. मिस उनके डायरी में हमेशा हर चीज़ में की नोंद रहती थी हमेशा. तो वो चीज़ में फिर रिकॉर्ड पे निकाल देते, अच्छा नहीं तू इस वक्त नहीं थी घर पे, इस वक्त कहीं बाहर गई थी तो नहीं, ऐसे मिस दैट पर्टिकुलर ही वॉज. और जब हम उनके पास जाके मिलते थे या सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता के वक्त में हम लोग बैठते थे सामने, तो कभी हमने पॉलिटिक्स की बातें की नहीं.
हम बोली तो कौन कौन
हम मीन्स हम मीन्स मैं
यू. अच्छा आई थॉट कि सारे एक
थोड़ा बहुत ऐसा है कि अभी क्या हुआ है, बहुत सारे ये कथा के वक्त में बहुत सारे यूपी के लोगों से बातचीत हो रही है
तो उनका
हाँ
बोलने का अंदाज वो हो गया, यूपी वाला हो गया.
हाँ मिस अभी अभी
अच्छा, मैंने सोचा सब साथ बैठ के
हम मेरे बच्चे भी रहते थे कभी कभी.
हाँ
मेरा बड़ा बेटा जो क्रिएटिवली बहुत वो है, तो हम
दोनों इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि सब को माना जाता था कि हाँ दे विल हेड शिवसेना, नो दिस वन विल हेड शिवसेना, दैट वन विल हेड. नाउ व्हेन योर मैरिज ब्रोक अप, strangely enough, which was a unique thing, is that your husband left the house और आप रही घर में. तो उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि why did he leave the house, usually बहू निकलती है.
तो ये यही इंडियन मेंटालिटी.
हाँ करेक्ट.
वो जहाँ मुझे नहीं लगता कि सुशिक्षित या सुशिक्षित औरतें भी ऐसा बोलती होगी, जिनका करप्ट माइंड है या जिनका माइंड कहीं गलत जगह पे चलता है, तो वो उनसे ऐसे ऐसे
बहुत न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे.
हाँ बहुत पॉजिटिव नेगेटिव. वो देखिए हमें उतनी शक्ति होनी चाहिए कि क्या आपको फेस करना पड़ेगा, और वो अगर ऊपर ईश्वर है आपके साथ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप फेस भी कर देते हो, उसके और भी शक्ति आती है. रीज़न ये था कि वो साहब जिनको आप बाला साहब जी के नाम से जानते हो, उनके कुछ सिद्धांत हो और वो सिद्धांत को अगर आप जानते हो या मानते हो तो डेफिनेटली ये निर्णय जो भी उन्होंने लिया था वो उस पर कोई शक नहीं करेगा. क्योंकि वो लड़का है, अगर लड़का काबिल नहीं है जो भी है और कुछ कारण की वश अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है. मेरे झोली में दो बच्चे थे और मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं था. मैं अपने बच्चों को सवार रही थी, अपने घर को सवार रही थी, अपना अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, तो मेरे में मैंने कुछ गलत तो किया नहीं. तो प्रश्न उठता ही नहीं है कि मुझे घर से बाहर क्यों निकाले, और एक औरत है इसलिए आप उनको घर से बाहर निकाले, ये कहाँ का न्याय है. तो वो जो निर्णय उन्होंने लिया वो उनकी तरफ से सही निर्णय था. हालांकि मैंने उनको बोला भी, मैं अपने बच्चों को लेके निकल जाऊँ तो बोलती नहीं तुम्हारा छोड़ो, बच्चों का हक है. तुम तो बाद में आती हो पर बच्चों का हक मैं नहीं जाने दूंगा. तो आज भी मातोश्री में भी उन्होंने अगर घर रखा है वो बच्चों के हक की वजह से रखा है.
हाँ उनकी जब विल निकला तो
हाँ
आपका नाम था, बच्चों का नाम था और उनके बेटे का नाम नहीं था. आपको कभी ऐसे लगा दैट बाड़ा साहिब वॉज अनफेयर ऑन वन सन?
नॉट एट ऑल. इनफैक्ट ही हैज़ हेल्प्ड हिम ऑल्सो इन द लेटर स्टेज अ लॉट इनफैक्ट. बट द थिंग इज कोई इंसान अगर किसी को दोष देना चाहता है, वो कितना कुछ भी अच्छा करे, तो अगर उसका नज़रिया वो दोष का है या उसकी मेंटालिटी दोष देने की है, तो वो उसी नज़र से देखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, वो खुद ही जाने कि हाँ ये मेरी गलती थी तो ठीक है, नहीं तो कोई आके ऊपर से कोई उसको कहे, मुझे नहीं लगता।
ये आई हैव नोटिस्ड दिस विद मेनी पीपल, स्मिता जी, आई डोंट नो वेदर यू हैव फेल्ट, बिकॉज आप भी बहुत लोगों से मिलते हैं इन द कोर्स ऑफ योर लाइफ, दैट जो बहुत सक्सेसफुल पावरफुल इंसान होते हैं, उनकी फैमिलीज पर बहुत प्रेशर होता है, उनके स्पेशली बेटों पर। वो दे कैन नेवर मेजर अप ना, वो कभी वो नहीं बन सकते, nobody can, and then there is always that thing ki kahan tumhara pita aur kahan tum, wo pressure bahut hota hai,
hota hai, hota hai, wo to hota hai, kyunki bolte hai na jo bade ped ke niche chhota ped sahi tarah se nahi ugta, to wo bada ped jaane ke baad par usme seekhta zarur hai wo, uske baad mein uska jab waqt aata hai, jab usko mauka milta hai, तब वो जो ज्ञान उसने पाया है,
वो बरगद के पेड़ के नीचे की बात है। हाँ,
तो अगर वो ज्ञान पाया है उसका सही इस्तेमाल करो तो तुम भी बड़े बन जाओगे। तो वो अपने पे है ना कि अगर वो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो।
तो वो मैंने देखा बेटियां और बहुओं पे वो प्रेशर नहीं होता, और वो बेटियां और बहुएं जो हैं वो कुछ कर पाती हैं, वो बहुत सीख लेती हैं, उतना ही सीखती हैं जितना बेटे सीखते हैं, लेकिन उन पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता, इसलिए वो फल फूल जाती हैं। लेकिन बेटों पर जो प्रेशर होता है,
हमारे संस्कृति में या हमारे इंडियन मेंटालिटी में आज तक यही चलते आ रहा है कि बेटा है तो उसको घर का भार संभालना है। मैं बताती हूँ, मेरी माँ हमेशा बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 3 बेटियाँ हैं। वो मिस इतनी खुश होती है, हमेशा लोगों को बोलती है कि ये तो मैं, मुझे तो वो बेटा ही बोलती है, क्योंकि मेरे साथ ही मेरे माँ बाप रहे हैं, और अभी पिताजी रहे नहीं पिछले 3 साल से, और माँ मेरे साथ रह रही है। पर कहने का मतलब, आज का वो दौर नहीं रहा। आज का दौर में पेरेंट्स को अगर बेटी भी होती है, उनको पता है कि ये हम बेटी भी बहुत सक्षम हो सकती है और हमारे घर का भार संभाल सकती है। तो यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। ये सोच जो आप बोल रहे हो वो शायद कुछ साल पहले की बात है, पर अभी बहुत कम दिखाई देती है।
आजकल वो सिंघानिया परिवार का भी न्यूज़ में आ रहा है,
बट बहुत डर्टी में लोगों को पता नहीं क्या इतनी वो रहती है। अच्छे काम के बारे में बात करो, जिनके घर घर में किसी के क्या चल रहा है, उसमें क्यों इंटरेस्ट रखते हैं।
हाँ, दैट्स अ पॉइंट, आई अग्री विद यू कि नहीं होना चाहिए। बट इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इट्स अ फैमिली बेस्ड थिंग। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर रन बाय फैमिलीज। आप अगर कांग्रेस को भी देख लीजिए तो एक फैमिली, अगर उस फैमिली में ज़रा भी दरार पड़ जाती है तो डाउन द लाइन देर इज़ अ प्रॉब्लम। आप अगर इफ़ यू सी समाजवादी पार्टी, जब बाप बेटे में झगड़ा हुआ था तो देर वर डिविजन्स, चाचा आ गए, भतीजे इस तरफ हो गए, वो सब हो रहा था। सो एनी पार्टी यू सी, इवन व्हेन यू सी द साउथ इंडियन पार्टीज, जब आप चंद्रबाबू नायडू का देख लीजिए,
जहाँ पावर होती है ना वो मिस वो शिवाजी महाराज तभी से चलता आ रहा है,
करेक्ट,
मिस उनके पहले से भी चलता रहा है। जहाँ पावर वहाँ
करप्शन हैज कम इन। तो फिर सिंघानिया परिवार का भी इसीलिए मीडिया का इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो शेयर वैल्यू कम हो जाती है जब ऐसे होते हैं, बिकॉज एवरीबडी वंडर्स की कैपिटल वाइप ऑफ होगा, क्या होगा अगर 75% या 50% किसी और को जा रहा है, कंपनी कौन चलाएगा। इसीलिए द इंटरेस्ट इन योर फैमिली, द ब्रेकअप्स इन योर फैमिली, जो दरारें पड़ रही थी, उसकी वजह से यू कैन इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ शिवसेना वर्कर्स डाउन द लाइन, एंड देन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। सो दैट इज़ वाई आई वुड थिंक दैट इट इज़ नॉट जस्ट द नीड फॉर स्लीज, इट इज़ ऑल्सो टू फाइंड आउट कि ये परिवार एकजुट रहेगा कि नहीं, और अगर एकजुट नहीं रहेगा तो अगर परिवार टूट जाता है तो किसको मिलेगा। और देखो टूट गया ना, शिवसेना टूट गई ना,
इतना नहीं चाहिए था उनका, उनकी आत्मा को बहुत दुख होता होगा अभी भी। हम तो मिस जब राज और उद्धव अलग हो रहे थे तो मैंने बहुत प्रयास किया दोनों को वो करने का, बट कुछ चीज़ें बहुत ही गहरी होती है जो लग जाती है, तो उसकी वजह से, और कहीं किसके किन्हीं किनके उद्देश्य होते हैं कि नहीं सिर्फ हम ही हैं, हम ही वारसदार हैं, बाकी कोई है नहीं। तो अगर ये वृत्ति अगर किसी एक के दिमाग में है तो वो ही खुद को वारसदार समझता है और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई मायने नहीं रखते उनके लिए। तो अगर ये वृत्ति से चलोगे तो कहाँ यूनिटी रहेगी।
तो कोई बाला साहब ने क्यों नहीं क्लियरली बता दिया था कि उत्तराधिकारी कौन होगा, किसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट भरोसा किया और उन्होंने क्लियर नहीं किया।
वो तो अभी उनको पूछना पड़ेगा।
नहीं, आप वहाँ घर में रहती थी ना,
मुझे मुझसे कभी ये बातें, हम कभी नेगेटिव बातें कभी करते नहीं थे। सिर्फ इतना ही है कि मुझे उन्होंने इतना कहा था कि तुम पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मत आना क्योंकि यहाँ बहुत बहुत सारी वो है, खिचड़ी है। तो उससे अच्छा मैं आपको राज्यसभा में, तुमको मैं राज्यसभा में देना चाहूँगा। वो उनकी इच्छा थी, जब जो कि मैंने कभी मांगा नहीं था। सिर्फ मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है अगर मुझ में काबिलियत है या नहीं है। तो बोलते तो उन्होंने जब मेरा काम देखा या मेरा डिवोशन देखा समाज, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया। 3 साल से लगातार वो प्रॉमिस करते गए पर वो दे नहीं पाए। अभी उसके पीछे क्या कारण था, कौन था, वो नहीं मुझे पता। और पता भी होगा तो भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये हुआ है।
कुछ तो अंदाज़ा होगा आपको कि किसने वो सैबोटाज किया।
नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती जब तक मुझे मेरे कान में कोई आके ना बोले कि नहीं इसने बोला है। और वो मुझे, हर किसी को पता है, हर किसी को अंदर से पता है कि कौन नहीं चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। तो वो चीज़ें समझने, अंडरलाइन है वो चीज़ें, समझने वालों को इशारा काफ़ी है, ऐसे ही समझ लो आप।
पर शिंदे साहब भी इशारों में कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जब महाराष्ट्र में बाढ़ हुआ था तो उस वक्त उद्धव जी जो हैं वो अपने परिवार को लेके होटल में चले गए और बाड़ा साहेब को उन्होंने मातोश्री में ही छोड़ा। तो बाप बेटे में भी रिश्ता, उसमें भी खटास थी।
एक्चुअली हम जब माँ साहब चली गई थी तभी हम वहाँ थे पारसी कॉलोनी में, और तभी से मैं और मेरे दो बेटे और जयदेव और साहब हम वहाँ रह रहे थे। तो उस वक्त मैं पूरा उन्हीं के साथ थी और उन्हीं की सेवा कर रही थी। वो जो दौर था, उनको माँ जाने के बाद का जो दौर था वो बहुत ही कठिन था। और उस वक्त मुझे इतना मत पता है कि मैं और मेरे बच्चे उनके साथ थे, तो मुझे ये मालूम नहीं कि उन्होंने उनके बीच में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। माँ बाप बेटा और बाप के बीच में जो भी होती है चीज़ें, वो ना बाप पिताजी बोलते हैं ना बेटा बोलेगा, क्योंकि मैं बहू हूँ। ये सब चीज़ें होती है जो अंदर ही अंदर की होती है और वो सब हम कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मैं उस बात को कभी एनकरेज भी नहीं किया कि अरे ऐसा ये वो। इट्स कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स विच आई रियली डोंट बिलीव इन। इट्स बेटर इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समवन, समबडी लाइक साहेब, यू बेटर लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, यू बेटर अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम हिम।
आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या, आप गुरु शिष्य कहेंगी?
गुरु शिष्य कहे, मेरे फादर इन लॉ तो नहीं, मोर देन दैट, बिकॉज ही वॉज रियली प्रोटेक्टिंग मी मोर देन लाइक माई फादर। So for me he was like guru and everything. Like he taught me why I am here today in front, sitting in front of you, just because of him.
So if I was to come back to the number of people who used to come to meet him, what was his relationship with say a Sharad Pawar? Was it possible for two people to function in this city with the same kind of power that was there?
The difference between two people,
ji,
that Mr. Sharad Pawar is a real politician and Bala Saheb Thackeray is not at all a politician. These are the two different personalities, but Saheb always used to see him as a friend. There are so many other politicians also, those who are sitting in oppositions, those who were sitting in opposition. And even if you say, if you think that if he was against of Muslims or whatever, there are tremendous many people, Muslim people, Muslim actors were his friends, which we have seen him so closely. So he was like, बोलते ना यारों के यार, वैसे इनका जिंदा दिल था. तो पॉलिटिक्स असाइड, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू दैट डायस, डेफिनेटली ही विल पुट हिज स्टैंड अगेंस्ट दैट कैरेक्टर, नॉट अ पर्सन. But definitely if he has to use something, some kind of a caricatural kind of remarks, which he used to do it, which is his
USP. Samna mein, ya phir when he would have his sabhas. Matlab, he would roast people.
Of course.
Completely.
Yeah, I mean, that's his personality. Uh-huh. And that is why people love him. Because he used to touch people's heart. Like, he used to really know what... But he used to talk. He never used to give bhashan. Bolta na, wo nahi karte the wo.
And he never used to think ki ye politically correct hai ki nahi bolna.
Haan. Aur ek baar bol diya to usko peeche nahi hatte. To wo, unhone jo mujhe sikhaya, aur main usi raste se chal rahi hu. Mujhe hamesha yahi kuch one-liner, two-liners everyday sikhate gaye. Wo प्रीच नहीं करते थे, सिखाते मीन्स वो ऐसे करो ऐसे करो नहीं, वो बात करते जाते थे और हमको उससे सीखना होता था.
डांटते थे वो?
हाँ, कई बार डांटते थे. स्पेशली क्या बच्चों के बारे में, अगर क्योंकि हम होता क्या था, कभी भी कुछ नई खिलौने आ गए स्कूल मार्केट में, तो हमारे घर में पहले वो खिलौना आता था. और मैं हमेशा यही होता था कि मेरे जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि मेरे बच्चों को पहले कुछ अर्न करो, फिर ये चीज मिलेगी ना. वो
आपकी
होता है
जो मिडिल क्लास मेंटालिटी. हाँ, हाँ, जो होती है.
तो मैंने बोला
इट्स अ रिवॉर्ड.
हाँ, करेक्ट. तो मैंने बोला आप वो कुछ सोचने से पहले आप उनके सामने रख देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी. तो बोलते तुम चुप बैठो. तो तभी मैं बहुत डांट खाती थी. मैं बार बार यही बोलती थी और वो बार बार यही बोलते थे कि तुम चुप बैठो, तुम कुछ नहीं बोलो. मैं बचपन में बोतल के साथ खेलता था और हमको खिलौने नहीं मिले तो मेरे नातों को मैं नहीं देख सकता. मैं मुझे जब तक होगा मैं दूंगा, तब तक कुछ नहीं बोलोगे तुम. चुप, क्या कर सकते.
Was he like that with everybody in the family?
Everyone. सब जमा हो जाते थे सब. हाँ. सबके बच्चे. हाँ. और वो छोड़ो, मिल बड़े भी, अगर सपोज आपने आप गई हो उनको मिलने, सपोज उन कुछ गिफ्ट लेके चली गई हो, परफ्यूम की बॉटल हो ये वो, और सपोज मैं बाद में चली गई उनको मिलने के लिए, वो सामने पड़ी है, वो अगर मुझे नहीं पता क्या है, अरे वहाँ अच्छा बहुत खूब छाने हो होते गेहूं जा
टेक इट.
हाँ, मीन्स कभी लालच नहीं रखा उन्होंने, ना कभी वो कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ना पैसे की लालच रखा सिर्फ.
बट हिज बैक ब्रोक व्हेन हिज वाइफ डाइड, है ना, उसके बाद ही वाज नॉट द सेम मैन.
हाँ, कुछ अरसे तक, और क्योंकि हेल्थ पे भी अफेक्ट कर दिया उनके, कहीं ना कहीं अंदर से इंसान टूट जाता है जब उनका, ही लिटरली लव हिज वाइफ, मीन्स वो आखिर तक उनका फोटो खिस्से में रहता था उनके, हमेशा सुबह में नहाने के बाद कपड़ा वो डालने के बाद उनको पूजा करना, ये करना. तो ये हमने बहुत इतने नज़दीक से देखा प्यार क्या होता है, और वो हमने उनके मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है, उन माँ को बहुत प्यार किया उन्होंने, और वो उनको बहुत मिस करते थे बहुत.
अच्छा, हाउ डिड यू डिवेलप इंटरेस्ट इन फिल्म मेकिंग, और आपने फिल्म भी बनाई, तो वो एक तरफ समाज सेवा, दूसरी तरफ घर संभालना विद सो मेनी पीपल कमिंग इन, आपके बच्चे उनको पालना पोसना, फिल्म मेकिंग कैसे आए, वेयर इज द टाइम फॉर इट एंड हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड?
एक्चुअली मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मुझे बचपन से बहुत म्यूज़िक और इसका शौक था. और हुआ क्या, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा बड़ा बेटा है वो भी काफ़ी क्रिएटिव है, तो
ऐश्वर्या
बड़ा राहुल
बड़ा. ओके.
और उसमें क्या हुआ, मेरे देवर ने जो बिंदा ने ऑलरेडी पिक्चर बनाई थी अग्निसाक्षी, और तभी वो थोड़ा जस्ट बड़ा हो रहा था राहुल, उसने पोस्टर देखा ऐसे, तो बोलते मॉम व्हाई डोंट यू मेक अ फिल्म, वी मेक अ फिल्म. सो आई सेड बेटा आई विल ट्राई, आई विल डेफिनेटली ट्राई. पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर ने वो मेरी बात सुन ली और फिर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल हो गया कि चीची गोविंदा से हमारी मुलाकात हुई थी घर पे। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि मुझे पिक्चर बनानी है, तो बोलते हाँ भाभी चलो करो बनाते हैं। और संजू उस वक्त जेल से जस्ट निकल गया था, तो डेविड ने मेरे को एक कहानी सुनाई,
डेविड धवन
ने। हाँ, तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत उसका स्केलेटन सुनाया, तो मैं बोली हाँ बहुत बढ़िया, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कॉमेडी ये। और चीची ने मुझे, गोविंदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं भाभी करो, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ी सी टूट सी गई थी और प्रेग्नेंट भी थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे टर्निंग पॉइंट चाहिए था जिंदगी में, कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी एनर्जी सोच दूसरी जगह लगानी है, कि जहाँ मुझे खुशी मिले या मेरे अंदर जो पल रहा है बच्चा उसको खुशी मिले या जो भी है, वो माहौल चेंज करना था। और मैं क्या,
योर मैरिज वाज ऑलरेडी ऑन द रॉक्स
फ्रॉम डे वन, दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, बट फाइन, मीन्स आई हैव कम आउट ऑफ इट, एंड मे बी बिकॉज व्हाट आई एम टुडे दैट स्ट्रांग लेडी बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। बट द थिंग इज, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मैं हॉस्पिटल्स में वगैरह जाती थी, तो मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी लोगों का दुख देख के, HIV को देख के ये वो। तो साहब ने एक दिन मुझे बहुत डांटा, आज से तू बंद करना, ये नहीं जाओगी हॉस्पिटल्स वगैरह में, जाना बंद करो, क्योंकि इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ एंड इट्स नॉट यू, इट्स अफेक्टिंग योर चाइल्ड। तो सुनना पड़ा मुझे। फिर मैं कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं अपने वो, तो मूवी आ गई। सो मुझे लगता है कि अगर आप उसको मानते हो ऊपर वाले को, तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं दिखाई देता है आपको। और फिल्म होती गई, फिर मैं टीवी में एंटर किया, फिर बहुत सारी मराठी हिंदी टीवी सीरियल्स बनाई, वो हिट हो गई और हौसला बढ़ा और खुशियाँ मिली क्रिएटिव फील्ड में। तो समाज सेवा तो साइमल्टेनियसली चल ही रहा था, जो भी मुक्ति फाउंडेशन फॉर्म किया 97 में मैंने फॉर्म किया, आज 25 साल हो गए उसको, वो मुझे पता ही नहीं चला कि 25 साल कैसे हो गए। डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज लेते लेते हमने काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, पर
उन दिनों हमने इतनी सारी, हम लोग वीडियोस देखते थे ज़्यादा, तो मतलब फिल्म तो देखा हमने, इट वाज अ वेरी फनी फिल्म, इट वाज पिक्चराइज्ड वेरी वेल, द सॉन्ग्स वर वेरी गुड ऑफ दैट फिल्म, but we used to see you all the time in film parties, film functions, muhurat, ye wo sab mein, aur uske, aur us waqt there was a lot of, you know, write ups in magazines and all that. Smita Thakre is one of the most powerful people in the film industry, wo agar phone karke kisi producer ko keh de ki inko aap role de do, to majal hai ki producer role na de.
Ha, main danda leke jaati thi unke piche. नहीं, बात वो होती है कि आप कितना रिस्पेक्ट देते हो लोगों को, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने कभी अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, पर ये ज़रूर किया है कि जो सपोज़ यश जी मुझे बहुत प्यार करते थे उस वक्त, मैं स्मिता ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी की बहू थी, और मैं अगर पब्लिक में जाके यश जी के पैर छूती हूँ, उनका ओहदा है और मैं उनको, ये हमारे संस्कार है, ये सब में भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने मी एज एन इंडिविजुअल मुझे वो प्यार करते गए या रिस्पेक्ट देते गए, जो भी है। शाहरुख भी, अभी कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि पावर जब होती है तभी वो आते हैं, मीन्स उन्होंने प्रोग्राम्स किया तो आते हैं, तो वो उनकी मेंटालिटी है, वो करते हैं, वो उस वक्त का मुझे शायद उसका भी फ़ायदा मिला कि मैंने जेन्यून काम किए, जो भी एड्स अवेयरनेस का काम किया। कुछ अगर 90% एक्टर्स को ये तो ज़रूर लगा होगा कि ये जेन्यून काम करे इसलिए भी आए होंगे, 10% एक्टर्स आए होंगे कि हाँ स्मिता ठाकरे साहब की बहू है, तो क्यों आए क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता, पर आए ज़रूर और सपोर्ट ज़रूर किया। तो फिल्म इंडस्ट्री हो या क्रिकेट इंडस्ट्री हो या जो भी है, पर हमने काम किया, मीन्स ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बैठे, जो भी फाउंडेशन में जो भी हमको पैसा मिला वो हमने समाज में वापस दे दिया। तो वो अगर देखता है, कोई ग्राफ देखता है कि ये इंसान सिर्फ नाम है, कुर्सी है, इसलिए उसने फाउंडेशन फॉर्म किया है, ऐसा नहीं है ना, एक सस्टेनेबिलिटी दिखा दी है हमने। 25 साल से कोई फाउंडेशन चलाना बिना कोई मदद के, गवर्नमेंट से एक भी पैसा नहीं लिया है मैंने आज तक, जो भी किया है अपने अपने एफर्ट से किया है या लोगों की मदद से किया है, पर किया है तो वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बढ़ते जाता है. और फिल्म इंडस्ट्री के लोग कोई अलग नहीं है, वो भी तो देखते हैं कि क्या कौन जेन्युइन है कौन नहीं है. तो मेरे ख्याल से यही कारण हुआ होगा.
यू आर नॉट पार्ट ऑफ द शिवसेना, आपका कोई पद नहीं था, लेकिन आप देख रही थी कि क्या हो रहा है शिवसेना के साथ. टूट गई शिवसेना, उसके बाद कांग्रेस के साथ चली गई, तब उस वक्त आपको शौक लगा कि मतलब कहाँ बाड़ा साहेब जिनका कांग्रेस के बारे में एक व्यू था, और उसके बाद उद्धव ने जाके अगाड़ी में, ही वॉज पार्ट ऑफ द अगाड़ी, और सरकार बनी. उस वक्त आपको क्या लगा था?
बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैंने साहब को और साहब के साथ इतना वक्त गुजारा है, तो उनके लिए सनातन जो हमारा धर्म है बहुत मायने रखता है. और मैं नहीं कहूँगी, कोई एक पक्ष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जो रास्ते पे वो उन्होंने हमेशा अपना मुद्दा रखा है या अपनी आइडेंटिटी को वो किया है, वो आइडेंटिटी को डाइल्यूट होते हुए देख के किसी को भी बुरा लगेगा. तो मुझे यही मानना है कि अगर आप कहते हो साहब को मानते हो, तो आपको उन्हीं रास्ते पे चलना ज़रूरी था.
अभी तो वो जो सरकार बनी थी वो उस आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर रही थी, आपके हिसाब से?
हाँ मिस, वो अभी अभी जो सरकार बन सरकार ने अभी
नहीं, जो अगाड़ी अभी वाली जो, सरकार जो है वो शिवसेना की आइडियोलॉजी को डाइल्यूट कर रही थी, आप कह रहे हैं?
किसकी
सरकार? जब अगाड़ी की सरकार बनी
हाँ,
थी
हाँ.
तो जब
नहीं, नहीं अभी जो बनी है ना, अभी जो बनी नहीं है, अभी जो उद्धव ठाकरे और उनकी जो यूनाइटेड वो है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो उनकी आइडियोलॉजी को डाइल्यूट हो रहा है. मिस वो जो
जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए थे तो उस वक्त आपको लगा कि वो बाड़ा साहेब की जो लेगेसी है उसको वो डाइल्यूट कर रहे थे?
हाँ.
और आपको लगा कि वो धोखा दे रहे हैं कि हाउ बैड डिड यू थिंक इट वाज?
नहीं, एक्चुअली मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जानने वाली में से नहीं हूँ, पर मुझे जो मेरी राय है वो मुझे यही लगता है कि उनको भी ख़राब लगा होगा, जो भी उनकी आत्मा को भी ख़राब लगा होगा जो भी आज हो रहा है. पर शायद उद्धव के कुछ खुद के कुछ कारण होंगे या जो भी परिस्थिति कुछ ऐसी आई होगी जो उनको ये निर्णय लेना पड़ा. पर साहब ने कुर्सी को कभी महत्व नहीं दिया था, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुर्सी के लिए ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है. तो वो ये कंट्रोवर्सी है,
क्योंकि बाड़ा साहब कभी भी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे अगर वो बनना चाहते,
पर नहीं बने जी.
और उसके बाद द आइडिया वाज दैट उद्धव भी नहीं बनेंगे, पीछे हटेंगे, मतलब नॉट बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व, लेकिन वो बने और वो भी कांग्रेस की के सपोर्ट के साथ. लेकिन द पॉइंट इज दैट ही रैन द गवर्नमेंट, चाहे कोविड के दौरान हो या जो भी हो. और अभी भी लोग कहते हैं दैट देर इज अ पार्ट ऑफ द शिवसेना विच स्टिल इज सॉफ्ट ऑन उद्धव, बिकॉज दे फील वो है तो बाड़ा साहब के बेटे. और शिंदे साहब अभी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो बाड़ा साहेब के बेटे नहीं हैं. इससे ये काफ़ी सारी तारे हैं,
ये पांच उंगलियां हैं, पांच उंगलियां अलग अलग हैं, हर एक के विचार अलग होंगे. आप ये चाहते, आप ये बोलेगी कि वारसदार ही सही वारसदार होता है जो खून का वारसदार है, दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं शायद ये पक्ष है, ये फैमिली नहीं है, तो वो दूसरा यही बोलता है कि मैं पक्ष को चलाना चाहता हूँ और पक्ष के जो विचार थे वही मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ. तीसरा बोलेगा नहीं, पर कुर्सी वारसदार को ही मिलनी चाहिए. चौथे बोलेगा नहीं, ये राज्य चलाना है तो डेफिनेटली सिर्फ वारसदार या खून रिश्ता नहीं होता, आप अपना काम भी देखना चाहते हो, क्या उद्देश्य से आप अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हो वो भी लोगों तक पहुँचाना होता है, काम करना होता है, लोगों को मिलना होता है. तो कई सारे मुद्दे हैं. आई एम नॉट द पर्सन हु कैन जज ऑन दैट, बट डेफिनेटली व्हाट आई फील दैट पीपल हु आर सर्विंग और सिटिंग ऑन दैट चेयर शुड वर्क फॉर दिस नेशन.
आप लास्ट ईयर यू वेंट एंड मेट विद द चीफ मिनिस्टर, उस वक्त बहुत चर्चा में आई थी आप, तो लोगों ने कहा देखो देखो शी इज़ पुटिंग हर वेट बिहाइंड शिंडे साहब, तो वॉट वॉज दैट थिंग?
इट शुड बी सीन ना नाउ, बाय नाउ देन इफ आई एम पुटिंग सो मच वेट ऑन हिम देन आज की तारीख. उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त मुझे उनके पार्टी वर्कर्स ने उन्होंने फ़ोन किया था और मैं तब जस्ट कहीं फॉरेन में थी मेरे ख्याल से, वहाँ से जस्ट आई थी और मुझे कॉल आया एयरपोर्ट से आते थे कि उधर दसरा रैली है तुम्ही येणार आहात ना. मी म्हटलं मला नाही माहिती मला काय अजूनपर्यंत कोणी बोलवलं ना 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 शिंदे साहेबांनी सांगितलं बोलवायचं. तर मी म्हटलं मला तुम्ही जर आदराने बोलवत असाल, इफ यू कॉलिंग मी विथ रिस्पेक्ट डेफिनेटली आय विल कम अँड आय वुड लव टू हिअर बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाईम दॅट वॉट एव्हरी वन वुड लाईक टू हिअर वॉट ही हिज थॉट्स आर what he really wants to do, no, whatever he's become. So, मैं म्हणून मैं वहाँ चली गई. मुझे नहीं पता था कि वो मुझे स्टेज पर बुलाएंगे या जो भी होगा, पर मैं गई थी ज़रूर क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाया गया था. उसके पहले मुझे कभी भी साहब थे तब तक हम लोग एवरी दसरा रैली में नीचे बैठते थे माँ और हम लोग, और वो हमारे लिए बहुत अहम दिन था. उसके बाद में बहुत इक्वेशंस चेंज हो गई, हमको मिस साइडलाइन किया गया ना, कभी कोई पार्ट हिस्सा कुछ नहीं समझा. तो ठीक है कोई नहीं, मेरा कोई ग्रजेस नहीं है, पर बात यह है कि कई साल के बाद मैं दसरा रैली में आमंत्रित हुई तो मैं क्यों ना जाऊँ. और मैं वो बंदे को जो हर जितने भी सारे शिवसैनिक हैं मैं उनको सालों से देखते आ रही हूँ, वो कुछ भी नहीं थे तब से देखते आ रही हूँ और वो आज चीफ मिनिस्टर बने, तो मेरे लिए वो एक खासियत थी. उसके बाद में आज तो ये है कि मैं आज तक उनसे कोई काम नहीं मांगा है ना उन्होंने मेरा कोई काम किया है, मैं ओपनली बोल सकती हूँ. तो मैं किसी की मिंदी नहीं हूँ, मैं किसी के हाथ के नीचे आने वाले में से नहीं हूँ.
2024 चुनाव के लिए तब आप बन सकती हैं हिस्सा शिवसेना के?
मुझे नहीं पता, मेरे अगर विचार उनके साथ जुड़ते हैं या मुझे उस परिस्थिति में लगता है ऐसा, तो अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है क्योंकि मुझे मैं एक अलग विचारधारा रखती हूँ. मैं बहुत ही स्ट्रेट और टू द पॉइंट वाली इंसान हूँ. जो है वो है, नहीं है वो नहीं है, मुझे ग्रे नहीं आता. और मेरे भाव भी मिस अगर मैं झूठ भी बोलूँ तो मुंह पे दिख जाता है तो वो ये मेरा स्वभाव है. हाँ. जो भी है तो एक्चुअली मुझे जो प्रेरित करते हैं वो थे बाला साहब और अभी जो प्रेरित करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी. तो उनके नेतृत्व में अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं बहुत ही प्रेरित हूँ, बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ उनके काम से. आज 9 साल में उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं और जो सनातन धर्म, जो पूरा विश्व का धर्म है, उसको हर एक के अंदर मीन्स आज यूएई के लोग भी सनातन को मानने लगे हैं. आज कौन से ऐसे देश है जब हम देखते हैं कि मोदी जी आगे जा रहे हैं और बाकी के सब पीछे जा रहे हैं, आज तक किसी ने देखा था ऐसा? कोई भी पंतप्रधान किसी भी देश का देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा. हम मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि आज क्योंकि आज वो पंतप्रधान है, पर वो जेन्युइनली मैं उनको मैं देखती आ रही हूँ. हमारे घर में जब मोदी जी आते थे वो नॉर्मल वर्कर थे, साहब को मिलने आते थे, मैं बहुत नज़दीक से उनको देखा है. पर उनके कार्यप्रणाली और उनका जो लक्ष्य, उन्होंने कभी अपने लिए खुद पैसे नहीं जमा किए, करते भी होंगे या बीजेपी या आरएसएस जो भी इकट्ठा करते भी होंगे, पार्टी के लिए करते हैं. यहाँ बाकी के पार्टियों के लोगों को मैं देखती हूँ वो अपना खिस्सा पहले भरते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है. इसलिए मैं मोदी जी का नाम ले रही हूँ क्योंकि मैं उनके सिद्धांतों पर चलने वाले में से हूँ. मुझे अगर मेरे पास कुछ आया है पैसा, जो मैंने समाज कार्य किया, जैसा समाज कार्य किया वैसा ही राजकारण करना चाहती हूँ. लोगों तक अगर आपको इतना अहदा मिला है या आपको ये कुर्सी मिली है तो अगर उस आपको हिसाब तो देना पड़ता है ना ऊपर,
तो फिल्म्स नहीं बनाएंगे अभी आप? क्योंकि नहीं, नहीं, मैं चर्चा बहुत चल रही है कि हसीना मान जाएगी पार्ट टू बनाएंगी आप।
बना रही हैं आप,
उसमें कौन होगा?
वो मेरे लिए वो एक मनोरंजन का, और मैं कल्चर को बहुत प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना एक
मराठी फिल्म्स वगैरह तो बनाई हैं आपने।
हाँ, मराठी फिल्म, मराठी सीरियल्स भी बनाई हैं।
बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यू आर नोन विद हसीना मान जाएगी।
आई एम नोन विद हसीना मान जाएगी, सैंडविच कैसे कहे, और अभी हसीना मान जाएगी टू बना रही हूँ, हम जो कहना पाएंगे, काफ़ी मैंने बनाई है पिक्चर है, और सैंडविच तो बहुत फेमस हो गई।
दीज टू रन टुगेदर इन योर लाइफ?
यस,
समाज सेवा एंड एंटरटेनमेंट।
यस,
इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखती हैं?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट्स अ वुमन
मल्टीटास्किंग।
हाँ, जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो पूरा मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे वो होते हैं काम के प्रति, ये फिल्म के लिए, आज का दिन फिल्म का है, नरेशन है, ये है वो है, कल का दिन समाज सेवा है, चौथा अभी भगवत गीता कर रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत स्पिरिचुअल और वो मानती हूँ इसको, और मैं ये समझती हूँ कि लोगों तक, आज के बच्चों तक समझाना बहुत ज़रूरी है कि मेरा उद्देश्य ये है कि कृष्ण एक बहुत बड़े टीचर है, और ज़्यादातर आजकल के बच्चे जो डिप्रेशन और ये वो सब बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके, नो आई एम यू नो दिस काइंड ऑफ कल्चर, तो उनमें थोड़ा सा ये है कि ठीक है, आप उनकी लैंग्वेज में, अगर सपोज़ किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी का वो हुआ है, तो आपको उस परिस्थिति में कैसा, मीन्स उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि कृष्ण को एक टीचर की तरह बताया जाए, और भगवद गीता का उद्देश्य भी आई है कि यूथ को थोड़ा सा फॉलो करना। तो मेरा हैशटैग मी मुक्त ऐसा है, जो कि जिसमें यूथ को मैं थोड़ा सा टारगेट करना चाहती हूँ, आज की तारीख में यूथ को क्या, कौन कैसे सही लैंग्वेज में रास्ता दिखाए।
तो इसमें आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताते हैं, दैट यू ऑल्सो फेस्ड difficulties and how you overcame depression. क्या आप अपनी कहानी भी उन्हें बताते हैं जब यूथ से मिलते
मैं
हैं?
actually depression में कभी नहीं थी,
और you were going through trouble, trauma.
Correct. मेरी विल पावर थोड़ी सी वीक हो गई थी, कभी फ्लक्चुएट हुई थी, पर आज की तारीख में विल पावर बहुत मायने रखती है, और वो मेरे अंदर बहुत है, और हमेशा मुझे माँ बाप ने यही सिखाया कि सामना करो, साहब ने भी यही सिखाया, भागो मत किसी के परिस्थिति से, भागो मत। तो मैं स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा रास्ता इस्तेमाल किया था, रेकी करती थी
हीलिंग के लिए।
हाँ, हीलिंग के लिए, और खुद पे रेकी करी, काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी करी, शाहरुख को जब ऑपरेशन हुआ था तभी उसको भी दी थी, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो स्पिरिचुअलिटी या रेकी हो या ऐसा कोई भी माध्यम हो जिसमें क्या आपका मन बहुत शांत हो जाता है,
ऑल्टरनेटिव थेरेपी।
हाँ, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, जो इर्द गिर्द घूमते रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो बैलेंस कर लेता है।
आपके बारे में एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। तो जब वो आर्टिकल निकला तो तब ये भी बात चल रही थी इसमें,
सोनिया गांधी
नॉट राहुल गांधी।
मैं उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कौन सी औरतों को आइडल मानते हो, या कौन सी औरत आपको आपको इंस्पायर्ड कर दिया। उस वक्त मैंने अपना बयान ये दिया था कि इंदिरा गांधी जी, डेफिनेटली, बिकॉज आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय हर करेज एंड द वे द डिसीजंस व्हाट शी हैज टेकन एन दैट टाइम। सोनिया गांधी जी का उस वक्त इसलिए नाम लिया था कि बींग अ फॉरेनर इन दैट सिचुएशन, द वे शी हैंडल्ड इट एट दैट टाइम, इट्स अ कमेंडेबल थिंग। मैंने वो जस्ट बिकॉज शी इज कांग्रेस लेडी, ये वो, मेरा कोई मकसद नहीं था, मुझे सिर्फ लेडी के बारे में पूछा गया, और वो उतना ही उन्होंने पकड़ के उसको कांग्रेस का कलर दे दिया, और फिर मेरा नाम चिपका दिया। ठीक है,
आपके साथ ऐसे कई बार हो चुका है?
हाँ, तो वो एक्चुअली शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि ये क्या कंट्रोवर्सी या कितनी गंदी सोच लोग,
पर आप रिफ्यूट नहीं करते हैं जैसे सोशल मीडिया में ट्वीट्स होता है?
ये मुझे साहब ने बोला है, जितना आप उसकी चर्चा करोगे नेगेटिव चीज़ों की, उतनी वो चर्चा बढ़ती जाएगी, उसको या तो महत्व ना दो, उसको इग्नोर करो, आप अपना कार्य करते जाओ, बस आगे जाओ। मुझे उन्होंने एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से बताई। उन्होंने बोला, मैं उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया एक लाइन, मुझे बोले इस लाइन को बिना छुए बड़ा करके दिखाओ। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने फिर थोड़ी बड़ी लाइन नीचे डाली, तो बोलते यही है, बस यही ध्यान में रखो, नथिंग शुड अफेक्ट, पीपल विल डेफिनेटली कम ऑन यू बिकॉज यू आर अ सिंगल वुमेन, दैट्स अ वेरी इजी टारगेट टू टार्निश योर कैरेक्टर, दैट्स अ बेस्ट थिंग इन इंडिया विच वन हैज टू डू, दे एंड दे गेट सक्सीडेड इफ यू गेट अफेक्टेड, बट पर्सन लाइक अस हु हैज डेवलप्ड गुड विल पावर विल नेवर गेट अफेक्टेड, एंड माई स्ट्रेंथ इज माई चिल्ड्रेन, they have always supported me, my strength is my mother and father, my strength is my father-in-law, my strength is my god, so it has not affected me.
Nice. Thank you so much, Smita ji, for being part of the podcast. And it was really nice talking to you.
Really nice
talking to
you,
a woman of substance. And let's see what happens with your career in politics and in films. Wishing you all the best.
Thank you so much. Thank you for having me.
Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe and share with whoever you think will benefit from listening into these conversations. Namaste. Jai Hind.